श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 21 की हम चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन वाचा कैर्लिंग स्त्रीन गुणाने तान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतांस त्रिन गुणानति वर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रगति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। श्री बलदेव विद्याभूषण की टीका को देखते हैं, वो कह रहे हैं कि अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति गुणों के पार चला गया है उसके लक्षण क्या हैं और उसका बर्ताव क्या होता है और वो किस अभ्यास के द्वारा इस स्थिति को प्राप्त होता है। तो पहला प्रश्न ये है कि किन लक्षणों के द्वारा व्यक्ति स्वयं समझ पाएगा कि वह गुणों के परे है। कैर उसमें शब्द आ रहा है कई लिंग ही, लिंग का मतलब लक्षण, किन चिन्हों के आधार पर व्यक्ति स्वयं समझे कि वह गुणों के प्रभाव से मुक्त है। दूसरा प्रश्न है कि उसका आचरण कैसा होता है, किस प्रकार का वो आचरण करता है, किम आचारः, और दूसरा शब्द यहां पे है कथम आचारः, उसको किस प्रकार का आचरण करता है। और उसके साथ ये भी प्रश्न है कि क्या जो व्यक्ति गुणों से मुक्त है वह अपनी स्वेच्छा के अनुसार कार्य करता है या फिर वेद शास्त्रों के नियम के अनुसार कार्य करता है। तो यानी तीसरा प्रश्न ये है कि और उसके बाद तीसरा प्रश्न ये है कि किस प्रकार से, किस अभ्यास के द्वारा व्यक्ति गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो हमने इस पूरे अध्याय में देखा था कि गुणों के संग के द्वारा व्यक्ति जगत में बंध जाता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र को में फंसा रहता है। और हमने पिछले 20वें श्लोक में देखा था कि जो व्यक्ति इन गुणों से मुक्त हो जाता है वह जन्म मृत्यु के चक्र को लांघने में सफल हो जाता है। तो नेचुरली इतना बड़ा लाभ है कि व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाएगा, तो व्यक्ति के मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या उसका लक्षण है, कैसे मालूम चले कि हम गुणों से पार हो गए और हमारा आचरण क्या होगा, उस व्यक्ति का आचरण क्या होगा जो गुणों से पार हो गया है और किस अभ्यास के द्वारा वो गुणों को पार करता है। तो ये चीज श्री बलदेव विद्याभूषण इसको समझा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य है वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांग लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांग लिया है। मतलब खुद व्यक्ति को कैसे समझ में आएगा, भाई जब हम बीमार हैं तो बीमारी के लक्षण पता होने चाहिए और हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने के लक्षण पता होने चाहिए। तो बीमारी क्या है, ये गुणों का इन्फेक्शन, तो वो तो हमें गीता के इस अध्याय से मालूम चला, लेकिन अब हम ठीक हो रहे हैं ये कैसे मालूम चलेगा, इसके बारे में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। उसका दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार का रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। आप देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल गीता भूषण को ही फॉलो कर रहे हैं, एकदम वही प्रश्न उठा रहे हैं। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव या प्रकृति को प्राप्त कर सके, अर्थात किस अभ्यास के द्वारा वह गुणों को लांग सकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है, अगर हमने सारा एनालिसिस सुन लिया कि गुण हमें किस प्रकार से बांधते हैं, सत्वगुण कैसे बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता है, तमोगुण का क्या प्रभाव होता है, ठीक है, लेकिन ये तो वैसे ही हो गया जैसे बीमारी का एनालिसिस हो गया कि बीमारी कैसे होती है या बीमारी का क्या प्रभाव होता है, लेकिन बीमारी का इलाज क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो ये इलाज है, ये भगवान बताएंगे अपने श्रीमुख से कि किस प्रकार से व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न समझ पाए होंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किन लक्षणों के द्वारा हम समझेंगे कि हम गुणों से मुक्त होंगे हुए हैं। दूसरा, किस वो जो गुणों से मुक्त व्यक्ति है, दिव्य पद पर स्थित व्यक्ति है, उसका आचरण कैसा होगा और किस अभ्यास के द्वारा वो गुणों से मुक्त हो जाएगा। तो जब प्रश्न समझ में आता है तो आगे के जो उत्तर हैं वो भी समझ में आएंगे। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने भगवान के उत्तर को अलग अलग श्लोकों में रखा है और प्रभुपाद जी ने 22 से लेकर 25वें श्लोक को एक साथ रखा है। तो हम दोनों की चर्चा को देखेंगे, देखते हैं हम कितना चर्चा कर पाते हैं। श्लोक क्रमांक 22 को देखेंगे। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेवाच पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अवचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो संस्कृत के सारे श्लोकों का प्रभुपाद ने अनुवाद किया, तो हम संस्कृत भी पढ़ लेते हैं। उदासीन वदासीनो गुणैर यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवम् योवतिष्ठति नेङ्गते सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा शम कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानपमान योस्तुल्य स्तुल्य मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका और प्रभुपाद जी की टीका को हम एक साथ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहले श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को देखते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न किया था दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस तस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो गुणों को पार कर चुका है, उसके क्या लक्षण होते हैं। अब उसी प्रश्न को थोड़ा अर्जुन अलग तरह से कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, उन्हें पूछा कि वो लक्षण क्या है जो व्यक्ति गुणों से मुक्त है। तो भगवान अब उसके गुणों को, जो दिव्य पद पर स्थित व्यक्ति है, जिसकी प्रज्ञा भगवान में स्थित है, चेतना भगवान में स्थित है, उसके लक्षणों को बता रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है, जो अर्जुन के प्रश्न है 21वें श्लोक में, उनका उत्तर 5 श्लोकों में दिया गया है, 22, 23, 24, 25 और 26। 22, 23, 24 और 25 जो हमने अभी बोला, इनमें भगवान उन क्या सकते हैं लक्षणों का वर्णन करेंगे जो व्यक्ति गुणों से मुक्त है, और 26वें श्लोक में से बताना शुरू करेंगे कैसे व्यक्ति 26वें श्लोक में बताएंगे किस प्रकार से व्यक्ति गुणों को लांघ सकता है। तो अब 22वें श्लोक में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति गुणों से मुक्त है उसके लक्षण क्या है, कैसे वो समझेगा कि वो गुणों से मुक्त है। पहली चीज कि जब वो सतगुण के प्रभाव को अपने चित्त में देखता है, जिसका अर्थ है प्रकाश। हमने पढ़ा था कि सारी इंद्रियां प्रकाशित होती हैं ज्ञान से, या फिर रजगुण के प्रभाव को देखता है चित्त में, जिसका प्रभाव था कि बहुत सारी काम इच्छा, बहुत काम करने की इच्छा को, और या फिर तमस को देखते हैं, यानी मोह उत्पन्न होता है। तो जो व्यक्ति इनके प्रकटीकरण पे उनसे घृणा नहीं करता और उनके जो प्रभाव हैं उससे वो विलग रहता है, और जब ये गुण चले जाते हैं, मान लो सत्वगुण का प्रादुर्भाव हुआ और चला गया, तो उसके लिए वो आकांक्षा नहीं करता, और सत्वगुण के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान और सुख है, जब वो चला जाता है किसी विशेष समय में, तो उसके लिए आकांक्षा नहीं करता। या रजगुण के द्वारा जो भोग की इच्छा है वो चली जाती है, तो उसके लिए आकांक्षा नहीं करता, या मोह चला जाता है तो उसके लिए आकांक्षा नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति जो घृणा और आसक्ति से परे है, वह व्यक्ति गुणों के पार है। तो यानी सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण चित्त पर प्रभाव दिखाते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति उनके प्रति घृणा और आसक्ति से मुक्त है तो वो व्यक्ति गुणों से मुक्त है। यानी गुणों के प्रभाव और गुणों की आसक्ति से मुक्त व्यक्ति गुणों से मुक्त है, ये लक्षण देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई साधक है तो अब उसके हृदय में बहुत सारी कामना आ जाए और वो उसे घबराने लग जाए कि अरे कामना आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो गुणातीत नहीं है। उनके प्रति न्यूट्रल होने की भावना, यही बात हम समझ रहे हैं यहां से। और इसका निष्कर्ष श्लोक क्रमांक 25 में आता है, गुणातीत सह उच्चते। ऐसा व्यक्ति जिसमें सारे लक्षण हैं वह व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। एक अद्भुत बात यह है कि घृणा का अभाव या आसक्ति का अभाव दूसरों के द्वारा प्राप्त नहीं है। दूसरे लोग समझ नहीं सकते हैं कि ये व्यक्ति के चित्त में क्या चल रहा है, ये सत्वगुण से प्रभावित हो रहा है कि रजगुण से हो रहा है कि तमोगुण से हो रहा है, और इसके हृदय में इन गुणों के प्रति, ध्यान दीजिएगा, इसकी व्यक्ति के हृदय में इन गुणों के प्रति घृणा या आसक्ति नहीं हो रही है, यह है बाहर से नहीं जान सकता। इसलिए 22वां जो श्लोक है यह पहले प्रश्न का उत्तर है कि व्यक्ति स्वयं कैसे जाने कि वह गुणों से मुक्त है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए इस बात को। अगर मैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रति न्यूट्रल हो रहा हूं, तो न्यूट्रल का मतलब घृणा और आसक्ति से ऊपर उठ रहा हूं, तो मैं स्वयं इसका अनुभव कर रहा हूं, दूसरे लोग अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए ये पहले प्रश्न का उत्तर है कि किन लक्षणों के द्वारा व्यक्ति समझेगा कि वह स्वयं गुणों से निरासक्त हो गया है, कि अपने चित्त को देखे कि वो चित्त में इन गुणों के प्रभाव से आसक्त नहीं है और उसे घृणा नहीं कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे ये आंतरिक गुण है जिसके द्वारा व्यक्ति समझ सकता है कि वह गुणों के पार हो गया है। अब हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। टेक्स्ट नंबर 23 को वो टीका कर रहे हैं। उदासीन वदासीनो गुणैर यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इति एवं योवतिष्ठति नेंगते। तो दूसरा प्रश्न था, मैं भी बलदेव विद्याभूषण जी की गीता भूषण टीका को ही देख रहा हूं, उसके बाद प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि दूसरा प्रश्न था कि उसके बाह्य गुण या लक्षण क्या हैं जिसके द्वारा अन्य लोग समझ सकते हैं कि वह गुणातीत है। तो वह 23, 24 और 25वें श्लोक में बताया गया है। क्या पहला गुण है कि वह निष्पक्ष रहता है, तटस्थ रहता है, न्यूट्रल रहता है। जैसे दो लोग आपस में अगर पार्टियां लड़ रही हों तो जो एक तटस्थ व्यक्ति है वह दोनों ही तटों के बीच में नहीं जाएगा। जो निष्पक्ष व्यक्ति है किसी भी पक्ष का पक्षपात नहीं करेगा। उसी प्रकार से तीनों गुण आपस में युद्ध करते रहते हैं तो वह व्यक्ति गुणों के इस विक्रिया से, कभी सत्वगुण रजोगुण में परिवर्तित हो जाता है, रजोगुण तमोगुण के द्वारा आवृत हो जाता है, तो उस चीज इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इस प्रतिक्रिया से वह ना तो सुखी होता है और ना दुखी होता है। जो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो गुणों के प्रभाव से व्यक्ति वो परेशान नहीं होता और वह समझता है कि गुण ही गुण वर्तन्ते, यानी गुण अपना कार्य कर रहे हैं और अपने प्रभावों को दिखा रहे हैं। जैसे सत्वगुण जो है वो ज्ञान प्रदर्शित कर रहा है और वह समझता है वैसा व्यक्ति कि मैं आत्मा हूं और मेरा गुणों से कोई संबंध नहीं है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, न इंगते का अर्थ है योवतिष्ठति नेंगते। नेंगते यहां पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं जरा देखिएगा, हिलता डुलता, कभी नहीं हिलता डुलता है। अब इसका अर्थ क्या है, क्या वो कुछ कार्य नहीं करता है? बहुत सुंदर बात है। नहीं, जो व्यक्ति गुणातीत है ऐसा नहीं है कि वो कार्य नहीं करता। प्लीज इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसा गुण उसको प्रेरित कर रहे हैं करने के लिए वैसा नहीं करता है। आपने इससे पहले के डिस्कशन को अगर सुना हो तो सत्वगुणी लोग सत्वगुणी कार्य करने के लिए बद्ध हो जाते हैं, रजोगुण लोग रजोगुण कार्य करने के लिए बद्ध हो जाते हैं और तमोगुणी लोग उस प्रकार के कार्य करने के लिए बद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गुणातीत है वो शास्त्र के अनुसार भगवान की भक्ति में लगा रहता है, गुणों के अनुसार वह कार्य नहीं करता है, गुण कैसा प्रेरणा दे रहे हैं वैसे कार्य नहीं करता है। तो न इंगते का अर्थ है हिलता डुलता नहीं है, अर्थात गुणों के अनुसार हिलता डुलता नहीं है, अर्थात गुणों को अपना स्वामी ना मानकर, माया को अपना स्वामी ना मानकर कृष्ण को अपना स्वामी मानता है। जैसे एक कुत्ता है जो अपने स्वामी को पहचानता है तो स्वामी के आदेश को मानता है, दुनिया के अन्य लोग जो बोलेंगे कि टक 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 कुछ भी बोलते रहेंगे उनके आज्ञा को नहीं मानेगा। तो जो व्यक्ति गुणातीत है वो जगत में कार्य करता है, ऐसा मत सोचे कार्य नहीं कर रहा, लेकिन उसका स्वामित्व स्वामी कौन है, कृष्ण है, कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है और इस प्रकार से वो गुणों से मुक्त रहता है। गुण किस प्रकार की प्रेरणा दे रहे हैं उसमें वो आसक्त नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने शब्द सीखा है न इंगते से। टेक्स्ट नंबर 24 की वो है कि ये जो 24 का वाला श्लोक है, समदुखा सुखा समदुखा सुखा स्वस्था समलोष्ठा सम कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। यहां पे बोल रहे हैं कि जो अगले दो श्लोक हैं इसमें बता रहे हैं कि और उसके आचरण क्या होता है। पहला है क्योंकि वह स्वस्थ, यहां शब्द आ रहा है सम दुखा सुखा स्वस्थ, मतलब अपने स्वरूप में स्थित होता है, वह समझता है कि वह आत्मा है, इसलिए वह सुख और दुख में समान रहता है। क्योंकि वह समझता है कि ये जो सुख और दुख है तथाकथित वह आत्मा का भाग नहीं, और क्योंकि वह वो समझता है कि धरती हो चाहे वह पत्थर हो और चाहे सोना हो, ये सब कह सकते हैं लोअर वस्तुएं हैं, अच्छी वस्तुएं नहीं है, ये कह सकते हैं निकृष्ट वस्तुएं हैं या भौतिक वस्तुएं हैं, तो इस कारण से वो उनको एक समान मानता है। वस्तुतः ये समझता है कि सभी ये गुणों का प्रकाशन है, इनमें से कोई भी वस्तु चिन्मय नहीं है, इस कारण से समलोष्टा सम कांचन, मतलब मट्टी को पृथ्वी को और सोने को एक बराबर देखता है, भगवान की शक्ति के रूप में देखता है। और वो वस्तुएं जो सुख और दुख देती हैं उनको भी वह धरती के समान मानता है। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति, बहुत सारी वस्तुएं हमको अच्छी लगती हैं तो उसको हम अपने पास रखना चाहते हैं, और जो वस्तुएं हमें अच्छी नहीं लगती हैं उनको अपने से हम दूर रखना चाहते हैं। तो यहां बात आ रही है कि चाहे अच्छी लगे वस्तुएं और चाहे खराब लगे वस्तु, व्यक्ति प्रभावित नहीं होता अपितु वह उनको एक बराबर देखता है। वो समझता है कि सुख और दुख ये केवल शरीर संबंधित है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। तो ये सब भी दिखाता है कि व्यक्ति निष्क्रिय है गुणों की प्रतिक्रिया के द्वारा। साथ साथ वह जीव और प्रकृति के बीच में अंतर देखने में सक्षम है। यहां पे लिखा है धीरा, धीर शब्द मतलब जो व्यक्ति समझता है कि प्रकृति वह प्रकृति के परे है, वह चिन्मय तत्व है, आत्मा है और उसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। इस जगत में स्वाभाविक रूप से निंदा और संस्तुति चलती रहती है, तो जो व्यक्ति गुणातीत है वह ये समझता है कि वह शरीर नहीं है वह आत्मा है, इस कारण से जब उसकी निंदा होती है या उसकी स्तुति होती है तो वह समझता है कि इसका जो संबंध है वो केवल शरीर से है आत्मा से नहीं है, इस कारण से उसमें समान रहता है और अपनी जो भक्ति की क्रिया है आध्यात्मिक क्रिया है उसके अनुशीलन में वो लगा रहता है। तो ये बात हमने समझ लिया, इस प्रकार का व्यक्ति गुणा से पार होता है। टेक्स्ट नंबर 25 को बोल रहे हैं, ये श्लोक अन्य श्लोकों को और समझा रहा है, उसमें बोल रहे हैं मान अपमानयो स्तुल्य स्तुल्यो मित्रारे पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत से उच्चते, अर्थात जो निंदा है और स्तुति है वह शब्दों के द्वारा होती है और मान और अपमान जो है वह शरीर या मन के द्वारा होता है, तो वह इन सभी के प्रति वो बराबर रहता है। तो आप ध्यान देंगे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि निंदा और स्तुति है वह जीव के द्वारा हो रही है और मुख्य रूप से मान अपमान जो है वो शरीर और मन के द्वारा होता है। सभी के प्रति चाहे शरीर के द्वारा अपमान मिले, मान मिले, मन के द्वारा मान अपमान मिले या फिर जीव के द्वारा निंदा स्तुति मिले, उसको बराबर मानता है क्योंकि इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन स्थिति इस प्रकार से आती है। और सर्वारंभ परित्यागी, अर्थात जिन कार्यों से उसका शरीर चले उन कार्यों के अलावा वह किसी कार्य में उद्यम करने के लिए वो प्रस्तुत नहीं होता। तो इस प्रकार का व्यक्ति किस प्रकार का आचरण करता है तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति गुणातीत है। और शब्द है गुणातीत स उच्चते, और ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति से भिन्न है जो गुणातीत होने के बारे में चर्चा कर रहा है। जैसे हम लोग तो अभी गुणातीत होने के बारे में चर्चा कर रहे हैं, गुणातीत हुए नहीं, लेकिन यहां पे उन लोगों की चर्चा है जो वाकई गुणातीत हो चुके हैं, और ये बड़ी विशिष्ट स्थिति है। तो गुणातीत होने के बारे में केवल बात ही करना आवश्यक नहीं है, अपितु वाकई व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वह गुणातीत कैसे हो सकता है। तो ये सारे गुणों की हमने चर्चा करी, अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। जब कोई जीव संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मृत्यु होने के बाद व्यक्ति प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। अर्थात जब भगवत धाम चला जाता है, जब वह भौतिक प्रकृति के चंगुल से पूरी तरह छूट जाता है। अन्यथा हमने सीखा था कोई व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में मरेगा तो उसी के अनुसार उसको अगला शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। तो शरीर से बाहर हो जाता है अर्थात शरीर धारण करने की प्रक्रिया के बाहर हो जाता है तब। लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। मतलब शरीर की क्रियाओं के प्रति ज्यादा आसक्त और घृणा की भावना नहीं होना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए जिससे भौतिक देह से उसका महत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। जब व्यक्ति सोचता है कि वह शरीर है या सोचता है कि शरीर मेरा है, दोनों ही स्थिति में व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को बहुत बल देता है। लेकिन जब भगवान कृष्ण की सेवा करता है तो इंद्रियों के प्रति जो भोग हैं वो अपने आप ही विस्मृत हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो व्यक्ति भगवान के विग्रह को सुंदर रूप से सजाता है तो खुद सुंदर सुंदर कपड़े पहनने की इच्छा जो कि हर व्यक्ति के हृदय में होती है वो अपने आप चली जाती है। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है। लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि जितनी मात्रा में मैं सोचूंगा कि मैं शरीर हूं तो इंद्रिय तृप्ति करना ये स्वाभाविक हो जाएगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति कृष्ण की सेवा करना शुरू करता है या जितनी मात्रा में उसकी चेतना कृष्ण की सेवा के प्रति आकृष्ट रहती है उतनी मात्रा में वह इस इंद्रिय तृप्ति की भावना से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। बड़ा स्पष्ट है, आप लोग समझते होंगे। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और ना उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है ना उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, व्यक्ति इस शरीर के द्वारा भोग करना चाहता है, यह भुक्ति की इच्छा है, और वो जब शरीर से परेशान हो जाता है तो काफी वृद्ध लोग कहते हैं अब हम मरना चाहते हैं, बेसिकली वो शरीर छोड़ना चाहते हैं, तो ये मुक्ति की इच्छा है। तो ना तो भक्त भुक्ति में इंटरेस्टेड होते हैं और ना वो मुक्ति में रुचि रखते हैं, वो कृष्ण की सेवा में रुचि रखते हैं। तो शरीर का भरण पोषण इसीलिए करते हैं ताकि वो कृष्ण की सेवा ठीक से कर सकें इस शरीर के माध्यम से, अन्यथा शरीर में आसक्त भक्त लोग नहीं होते हैं। तो यानी कि हमने क्या सीखा, भक्त लोग भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से मुक्त हो रहते हैं और इसी कारण से वह व्यक्ति कृष्ण की सेवा में आसक्त रहता है और इसी कारण से शरीर से ममत्व की भावना से मुक्त हो जाता है और शरीर और मन में ही ये गुण कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से गुणों के प्रभाव से सदा मुक्त हो जाता है क्योंकि वो अपने शरीर मन वाणी के द्वारा कृष्ण की सेवा करने के लिए उत्सुक होता है। तो अलग से सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे गुणों से मुक्त होऊंगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर पूर्व में जा रहा है तो उसे सोचने की जरूरत नहीं कि अरे मैं पश्चिम में कैसे ना जाऊं। अपने आप जब वो पूर्व दिशा में जा रहा है तो अपने आप ही पश्चिम दिशा से दूर जा रहा है। तो उसी प्रकार से अगर कृष्ण की सेवा करता है तो हम अपने आप ही दिव्य पद पर स्थित हो जाते हैं, हमें अलग से गुणों से मुक्त होने के प्रयास करने की जरूरत नहीं है, उस चीज को भगवान आके बताने वाले हैं। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथा कथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जो वाकई दिव्य पद पर स्थित है वो लोगों के लिए आसान होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और इस प्रकार का जो मान अपमान है वो बिल्कुल झूठा है। जो कोई भी हमारा गुणगान कर रहा है या निंदा कर रहा है वो केवल शरीर की कर रहा है, उसने मुझको यानी आत्मा को तो देखा ही नहीं है, तो इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। प्रायः इस जगत में लोग भक्ति नहीं करते क्योंकि लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लोग सोचते रहते हैं कि ये क्या सोचेगा, मम्मी क्या सोचेंगी, पापा क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, कोई सोचेगा। लेकिन जो भी सोचेगा वो आपके शरीर के बारे में सोचेगा या मन के बारे में सोचेगा मैक्सिमम, लेकिन आपके बारे में कुछ नहीं सोच सकता क्योंकि आपको तो उसने देखा ही नहीं है। तो इस प्रकार के ये झूठे मान अपमान के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए व्यक्ति को, और भगवान की भक्ति में लगना चाहिए दृढ़ता से। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल हैं, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वे पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी, एक मिनट इससे पहले समझ लीजिए इसका अर्थ क्या है। अर्थ ये है सोना हो चाहे पत्थर हो, उसको समान देखने का अर्थ है कि अगर उसका उपयोग कृष्ण के लिए है, हो सकता है तब तो भक्त उस पर रुचि रखते हैं, अन्यथा कोई रुचि नहीं रखते। ये ध्यान देना चाहिए कि उसको लोग व्यर्थ नहीं त्यागते, अपितु तो अगर उसका उपयोग भगवान की सेवा में है तो उसका वो उसको स्वीकार करते हैं। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। इसके द्वारा बड़ी आसानी से व्यक्ति गुणों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वस्तुएं तो कुछ हमें उपयोग करनी ही होंगी, लेकिन तो उनका उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए और तभी उसको स्वीकार करना चाहिए। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है, और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी मृणा नहीं करता, वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह उसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार में कुछ भी लेना देना नहीं है। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला चीज ये है कि जो व्यक्ति हमारा तथाकथित शत्रु है वह हमारे ही कर्म को ढो करके हमारे पास लाके दे रहा है। हमने कुछ गलत कर्म किया है, अब वो उसका पैकेज हमको लाके दे रहा है। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उस अपने शत्रु से घृणा नहीं करते, और जो कृष्ण भावना में मदद करते हैं उनको अपना पवित्र मानते हैं, यानी वैष्णवों को, भक्तों को जो हमारी मदद करते हैं, और जो हमारे शत्रु हैं तथाकथित शत्रु उनको शत्रु नहीं मानते, क्योंकि हमने ही गलत किया है, उसके एवज में हमको वो इस प्रकार से बुरा बर्ताव कर रहे हैं। इस प्रकार से भाव अगर रखता है व्यक्ति तो भक्ति में बड़ा दृढ़ता से प्रगति कर सकता है। दूसरा बात प्रभुपाद बोल रहे हैं कि संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। वास्तविक रूप से हम इस जगत को बहुत महत्व दे रहे हैं, जबकि हम इस जगत के हैं ही नहीं। जैसे भारतीय लोग थोड़ा चिंता करते हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा है, और अमेरिकन लोग चिंता नहीं करते भारत में क्या चल रहा है, क्योंकि हम तो वहां के हैं ही नहीं। उसी प्रकार से हम इस जगत की बहुत चिंता करते हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, लेकिन मुख्य बात तो ये है कि हम लोग इस जगत के हैं ही नहीं। ये बात अगर व्यक्ति समझ जाए तो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। तो ठीक है, जब तक जगत में हो वो थोड़ा उत्तरदायित्व ले सकता है, लेकिन इतना उसमें नहीं फंसना चाहिए कि व्यक्ति भूल ही जाए कि अरे मेरा तो असली जीवन कृष्ण लोक में है, गोलोक वृंदावन में है। जैसे स्वप्न से उठने के बाद व्यक्ति स्वप्न की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं होता, उसी प्रकार से जितनी मात्रा में गुणातीत होते हैं हम लोग, उतनी मात्रा में अनुभव होता है कि हम लोग इस जगत के नहीं है और उससे हमारा कोई संबंध नहीं। समझ रहे होंगे बात। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय धनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह अपने लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति समाज में बहुत सारी उथल पुथल चलती रहती है, और शाश्वत काल में अगर उसे कंपेयर किया जाए तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। कितने साम्राज्य आए, ये हुआ वो हुआ, कब से हम अनादि काल से जगत में फंसे पड़े हैं। मुख्य बात यही कि हम कृष्ण भावना का अनुशीलन करें, और इसीलिए कृष्ण भावना के लिए कोई भी कार्य करना पड़े उसके लिए भक्त को उत्साहित होना चाहिए, और उसको करके वह बड़े असहज रूप से गुणों से मुक्त हो सकता है। तो सोल्यूशन यही है कि कृष्ण के लिए अखिल चेष्टा करें, हर चेष्टा कृष्ण के लिए करें, और उसके लिए जो भी आवश्यक हो करे और भौतिक परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित ना हो तो व्यक्ति आसानी से गुणों को लांघ सकता है। हरे कृष्णा।